उलमाए हक होंगे, वो कभी अपनी तरफ से आपको बातें नहीं बतवाएंगे, वो अल्लाह की बात को ही आप तक पहुंचाएंगे। और उस बात को रद्द करना, आप उनकी बात को थोड़ी रद्द कर रहे हैं, वो कोई अपने बच्चों की बातें नहीं कर रहे, वो अपने घरों की बातें नहीं कर रहे, वो आपको अल्लाह की बात जो बताते हैं वो अल्लाह ताला की बात को रिजेक्ट करना है, अगर उन्होंने जो बात बताई उसको आपने रिजेक्ट किया। हाँ, होना चाहिए आलिम हक, उलमाए सू नहीं, उलमाए सू भी होते हैं। तो खुद को बड़ी चीज समझना अल्लाह के फरमान के आगे, खुद को समझना कि मेरी बात ज्यादा सही है, या मैं इस बात को क्या समझूं, या जो पैगंबर की बात आई है, रसूल जो पैगाम लेकर आया है, हदीस आप तक पहुंचाई जाए, या अल्लाह के कुरान में से कोई आयत पहुंचाई जाए, और इंसान सोचे लो ये क्या बात हुई, लो ये क्यों ऐसे है, इस तरह की बातें करना, तो यह वो सुनाने वाले को तो नहीं कुछ कह रहे, अल्लाह की बात के आगे फिर सरकशी करना है ये। और यही उन्होंने किया। मूसा अलैहि सलाम तो उन तक पैगाम अल्लाह का लेकर आए ना, भाई मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दो, उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया, तो वो किसके आगे सरकशी कर रहे हैं, अल्लाह के आगे। इन्नी आतीकुम बिसुल्तानी मुबीन, बेशक मैं लाया हूं तुम्हारे पास खुली दलील। खुली दलील क्या थी? वो जो दो निशानियां थी, सुल्तान मैंने आपको बताया ना, ऐसी दलील होती है सुल्तान जिसका आगे कोई जवाब ना दे सके, जो इतनी खुली हो कि कोई ये ना कह सके कि ये तो मैं मानता ही नहीं, ऐसे ना कोई कह सके, बिल्कुल वाजे हो, जो जैसे अब सूरज निकला हुआ है तो आप कहेंगे मैं तो मानती नहीं, लेकिन ये बिल्कुल खुली दलील है कि ये दिन का वक्त है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये माना है कि ये सुल्तान मुबीन खुली बिल्कुल, और वो क्या थी, आशा और यदे बैगा, आशा जो सांप बन जाता था और उनका हाथ जो रोशन हो जाता था बगल में डाल देते, तो और एक माना इसका ये भी है कि अल्लाह की बारगाह में खुद को बड़ा ना समझो, अल्लाह के खिलाफ बगावत ना करो, का मतलब क्या है, अल्लाह की बारगाह में खुद को बड़ा ना समझो, ये बगावत है। दूसरा माना अल्लाह पर बहतान ना मानो कि नहीं ये अल्लाह ताला ने तो बात कही ही नहीं है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है असल में, कि अल्लाह ताला की बात के आगे खुद को झुका दो, सरकशी ना करो, ये मतलब है, ये रिक्वायर्ड है हर एक इंसान से, सिर्फ उनसे ही नहीं, कि वो अल्लाह ताला की बात आ जाए ना, अल्लाह तआलू अल्लाह, सरकशी मत करो अल्लाह के मुकाबले में। क्या ये सिर्फ फिरौन की कौम के लिए था, या हर जमाने के लोगों के लिए, हर जमाने के लोगों के लिए, कि तुम अल्लाह ताला की बात आ जाए, उसका हुक्म आ जाए, उसकी कोई कोई फैसला आ जाए, तो उसके आगे खुद को झुका दो, समय ना हुआ ता ना करो, अकड़ ना जाओ कि जो नहीं नहीं जी हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमें तो ये समझ आई है, मेरी अकल तो ये कहती है, साइंस तो वो कहती है, हम तो ये नहीं मानेंगे, सब साइंस नहीं प्रूव कर रही इसको तो कैसे मान लें, नहीं झुक जाओ, क्योंकि तुम गुलाम हो, और गुलाम का कभी भी ये उसको जेब नहीं देता कि वो अपने आका के आगे खुद को बड़ा समझे या खुद सर उठाए, तो हर वक्त झुके रहना है, इसीलिए हम नमाज में भी झुकते हैं अल्लाह ताला के आगे, झुक झुक के इजहार करते हैं इस बात का, अल्लाह हम तेरे आगे झुके हैं, अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं है, या अल्लाह हम क्या चीज है, हमने तो अपना माथा भी तेरे आगे जमीन के ऊपर रख दिया, अपनी नाक रगड़ रहे हैं जमीन के ऊपर, या अल्लाह हम क्या है, हम तो बड़े हकीर हैं, बहुत छोटे हैं, मेरी अकल छोटी या रब, ये जो दिमाग है इसको भी जमीन पे रखते हैं कि नहीं रखते, जब सारा जमीन पे रखा होता दिमाग रखते हैं ना, फिर उसके बाद उठ के इसके बाद मुझे तो समझ ही नहीं आती इसकी दलील क्या है, ये तो मुझे दलील मुझे अपील ही नहीं करती, अभी तो आपने अपना सर जमीन पे रखा हुआ था उस अल्लाह के आगे जिसको आप अल्लाह अकबर सारी नमाज तो अल्लाह अकबर ही कहते कहते शुरू से, कितनी दफा अल्लाह अकबर उसमें कहते हैं, स्टार्ट ही अल्लाह अकबर से है, फिर भी अपने आप को बड़ा समझा और अपनी अकल को बड़ा समझा, फिर भी अकड़ते फिरते हो कैसे, आप अपने जब इजहार करते हैं नमाज में झुकने का, और देखिए जैसे हमने हाथ बांधे होते हैं, ये किसकी सूरत हाल होती, एक बादशाह की नहीं होती, किसकी होती है, नौकर की, गुलाम की, खड़े होने का अंदाज भी तो देख लें, हाथ बांध के खड़े हुए, ये नमाज सिखाती है कि गुलामी का इजहार करो, रुकू में जाते हैं तो आप गुलामी का इजहार कर रहे हैं, सजदे में जाते हैं गुलामी का इजहार कर रहे हैं, ये अल्लाह कुछ भी नहीं हूं, अल्लाह कुछ भी नहीं हूं, मैं तो जलील हूं, हकीर हूं, कुछ नहीं तेरे आगे। अल्लाह बड़ा तू ही, अल्लाह बड़ा तू ही, अल्लाह बड़ा तू ही, तू ही अल्लाह, तू ही अजीम, तू ही हर ऐब से पाक। ये सारा वक्त ये कहते रहते हैं, नमाज से उठ के कहते हैं जी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी, मेरे बच्चे मेरी मर्जी, मैं तो हर चीज में मेरी मर्जी है भाई। तुम तो कहते थे अल्लाह अकबर है, समझा ही नहीं ना नमाज को भी, इसलिए सारा वक्त अल्लाह अकबर करते रहे। और उसके बाद अपना आप अकबर है, नमाज से उठे तो यूं ही सलाम फेरा, मैं अकबर हूं जी। तो अल्लाह तआला अल्लाह, मत सरकशी करो अल्लाह के आगे, के सरेंडर कर दो खुद को, झुका दो खुद को, यही इस्लाम है, सरेंडर करना अपने आप को। और उसके आगे बगावत ना करो, खड़े ना हो जाओ, अपने आप को बड़ी चीज ना समझो। मैं तो तुम्हारे पास, उन्होंने कहा फरमाया कि मैं तुम्हारे पास खुली निशानी लेकर आऊं, वह इन्नी औस्तु बि रब्बी व रब्बिकुम अन तरजुमून, और मैं पनाह ले चुका हूं अपने रब की और तुम्हारे रब की कि तुम संसार करो मुझे। एक्चुअली उन्होंने, फिरौन और उसकी कौम ने इनको संसार करने की सीक्रेट प्लानिंग बना ली थी कि इनको पत्थर मार मार के हम मार देंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की इस धमकी के मुकाबले में फरमा दिया कि मैं पनाह ले चुका हूं अपने रब की, वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी वही रब है, तुम्हारा रब कोई और नहीं है, तुम्हारा भी वही रब है कि तुम संसार करो मुझे, इससे मैं अल्लाह की पनाह ले चुका हूं। तो सुभान अल्लाह, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। अब फिरौन की ताकत कोई कम नहीं थी, जमीन पे बहुत बड़ी थी ना, हम जानते हैं उसके एक इशारे के ऊपर जब बच्चे जिबा हो जाए और कोई चू तक ना करे इतने बड़े जुल्म को देख के, और वो जादूगरों को सूली चढ़ा दे, कहा जाता है 70,000 जादूगर थे यानी बहुत बड़ी तादाद थी, उनको सूली चढ़ा दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को कैसे उसने शहीद करा दिया, कोई बोला ही नहीं। सोच लें फिर उसका क्या उसका था, आगे भी आता है कि वो कितना जालिम था। उस वक्त उसके दरबार में साफ तौर पे कह देना मैं तो मेरा रब तो अल्लाह, क्योंकि वो कहता था अना रब को मुलाला, तो तुम्हारा भी रब ये नहीं है फिरौन, तेरा भी रब वो अल्लाह है और तू रब नहीं है, और इन लोगों का रब भी अल्लाह है, कुम तुम्हारा सब का रब अल्लाह है और मैं उसकी पनाह लेता हूं तुम्हारी इन धमकियों के जवाब में। अब देख लें जब उन्होंने अल्लाह की पनाह ले ली तो फिरौन उनका कुछ भी बिगाड़ ना सका, हालांकि जो ये सब कर सकता था उसके लिए क्या मुश्किल था, एक मूसा अलैहिस्सलाम को एक ठिकाने लगा देना, उनको कत्ल करा देना, हारून अलैहिस्सलाम को कत्ल करा देना, कोई उसके लिए मुश्किल तो नहीं था, लेकिन वो उनपे हाथ ना डाल सका थ्रू आउट। आप ये देखते हैं कि अल्लाह की हिफाजत में आ गए थे। इंसान को हमेशा अपने आप को अल्लाह के हवाले करना चाहिए, उसकी हिफाजत में आना चाहिए, क्योंकि उसकी हिफाजत से बड़ी कोई हिफाजत नहीं है। हर फितने से, हर आजमाइश से, हर किस्म की चीज से ना, कोई शर भी है जो मेरी तरफ बढ़ रहा है तो ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह लेती, अपने बच्चों को भी अल्लाह की पनाह में दे, वो स्कूल जाने लगे अल्लाह तेरी पनाह में देती हूँ, अल्लाह मैं तो नहीं कुछ कर सकती, मेरी मैं घर में भी हूं तो मैं इनकी क्या हिफाजत कर सकती ना, घर में भी वो किस चीज को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता होता, हम नहीं जान सकते, हम इनकी रखवालियां 24 घंटे नहीं कर सकते। अल्लाह तेरी हिफाजत में देती, अल्लाह मैं अपने आप को भी तेरी हिफाजत में देती हूँ, क्योंकि क्या फितने आगे, क्या आजमाइशें आ रही हैं, क्या चीजें हैं, क्या सा शर है जिसमें मैं पढ़ने वाली हूँ, या जिसका मुझे पता ही नहीं, मैं उसको खैर समझ रही हूँ, वो शर है, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती। जब अल्लाह के पैगम्बर अल्लाह की पनाह में आ रहे हैं तो हम क्या चीज है, हम खुद बच सकते हैं क्या, कभी नहीं। ऐ अल्लाह मुझे तेरी पनाह की जरूरत है, जिससे बड़ी हिफाजत कोई नहीं हो सकती। तो अपने आप को अल्लाह की पनाह में देना जरूरी है। और यहाँ पे मूसा अलैहि सलाम का यकीन और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल भी पता चलता है कि मैंने बस अल्लाह की पनाह में दे दिया, अब नहीं मुझे परवाह, फिरौन मैं तो अल्लाह की पनाह में हूँ, तुम संसार करना है मुझे करो, अपना काम करो, मैंने तो अल्लाह की पनाह ले ली, वो मुझे बचाएगा। यानी ये इतना यकीन है उनको, भागे नहीं, चीखे चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, ये नहीं कहा कि हाय नहीं ऐसा ना करना, हालांकि वो कितना पावरफुल था। तो डरना किसी चीज से नहीं, अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे। वह इल्लम तो मीनू ली, और अगर नहीं तो मानोगे मेरी बात, फात अजीलून तो छोड़ दो मुझको। ये कौन कह रहा है? मूसा अलैहि सलाम। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो ठीक है ना मानो, लेकिन मुझे अकेला तो छोड़ दो, यानी अब मुझे नुकसान तो ना पहुंचाओ, या मेरे पीछे तो ना पड़ो, या मेरे मिशन को तो ना रोको, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। फदा रब्बहू, फिर उसने दुआ की अपने रब से, किसने? मूसा अलैहि सलाम ने। क्या अन्नहा उलाई कौम मुजरिम, ए अल्लाह ये लोग तो मुजरिम कौम है। अल्लाह अकबर, ये एक दिन में थोड़ी उन्होंने कर ली थी, मैं कई साल गुजरे, मूसा अलैहि सलाम दावत देते रहे, इसके मजालिम भी खत्म ना हुए, फिरौन की सरकशी, उसकी जुल्म, इनको बर्दाश्त करते रहे, मूसा अलैहि सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल कैसे बर्दाश्त करती रही, किसी तरह से ये मान के नहीं देते थे। इनके ऊपर वो जो मेंढकों, टिड्डियों और खून और ये तूफानों का अजाब आया, उसके बाद भी ना माने, निशानियां देख के भी ना माने, कि यदे बैजा और वो आशा को देख के ही मान जाते, कोई चीज तो मानते, हर दफा वादे करते थे हम मान जाएंगे, अगर ये अजाब हमसे हटा दिया हम मान जाएंगे, हर दफा वही डगर। कितना समझाया, कितना बताया, लेकिन उसके बाद मूसा अलैहि सलाम ने फिर अल्लाह से ही दुआ की, जैसे नूह अलैहि सलाम की सूरह नूह के आखिर में दुआ थी ना, रब्बे फिर ली वली वाली दया वन मिनु मन दखला बैती मोमिन लिल मोमिनीन वल मोमिनात, वो भी दुआ करते हैं इसी तरह मूसा अलैहि सलाम ने, या अल्लाह बस, अब अल्लाह बस, जो नूह अलैहि सलाम है उनकी उससे पहले दुआ आती है, ये तो आखिर में है, उससे पहले दुआ आती है कि अल्लाह अब इनमें से किसी को ना छोड़ना, किसी काफिर को ना छोड़ना, वरना या अल्लाह ताला ये और तेरे बंदों को भटकाएंगे और इनके आगे उलाहत भी काफिर ही पैदा होगी, अल्लाह अब इनमें से किसी को ना छोड़ना इस जमीन के ऊपर। तो इसी तरह मूसा अलैहि सलाम ने भी दुआ की कि अल्लाह अब ये मुजरिम कौम है, इन्होंने नहीं अब्बास आना। और सूरह यूनुस में इस दुआ की तफसील भी मिलती है कि अल्लाह मैं अपने, कि मूसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने रब और तेरे रब की पनाह लेता हूँ हर इस बात से, कि जो हर उस मुतकब्बिर से जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता। तो वो डिटेल वहां पे है कि उन्होंने कैसे दुआ की। तो अल्लाह ताला ने फिर उस वक्त फरमाया था जब मूसा अलैहि सलाम ने ये दुआ कर दी, और पैगंबर ये दुआएं जो ऐसी होती है ना अपनी कौम के खिलाफ, उनका लास्ट हरबा होता है, बस लास्ट चीज होती है, उसके बाद फिर जब वो दुआ कर देते हैं तो बस उस कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर अजाब ही आता है उनके ऊपर। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, फिर असरी भी इबादी लाइन इन्नकुम मुत्तबाउन, आप निकल जाए मेरे बंदों को लेके रात के वक्त, असरी रात के वक्त सफर करना, रात के वक्त आप निकले, आप पीछा किए जाएंगे, ये भी बता दिया गया कि इन्होंने आपको छोड़ना नहीं है, फॉलो जरूर करेंगे आपको। और रात के बाद क्यों सफर किया जाता था, इसमें एक फायदा ये होता कि अगर दुश्मन है कोई आपका, तो रात के वक्त चूंकि रात ढांप लेती है इंसान को, तो रात के वक्त दुश्मन नहीं देख पाएगा, नहीं आ पाएगा, रात पर्दे का भी तो काम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के पहले पहर सफर किया करो, बिलाशुबा रात के बाद जमीन लपेट दी जाती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात के पहले पहर सफर शुरू किया करते, क्योंकि सहरा का सफर होता था, ठंडी रातें होती थी, सवारियां भी तेज चलती थी, प्यास नहीं लगती थी, लोग भी आसानी से सफर कर लेते थे। तो फरमाया जमीन लपेट दी जाती है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए रात के बाद सफर कर सकते हैं। तो उनको कहा गया आप रात के वक्त चले और आपको पीछा किया जाएगा। वतरुकिल बहरा रहवन, और फिर जब मुख्तसर यहाँ पे बात, जैसे कि हमें ये सारा किस्सा पता ही है पहले से, तो हमें पता है कि जब वो चले तो इनका पीछा किया गया, जब उनको एहसास हुआ कि ये लोग तो भाग गए, तो सोचें कि फिर कौमे फिरौन के ऊपर क्या गुजरी होगी, उन्होंने कहा कि हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं, और जब इनके पीछे दौड़ाए उन्होंने अपने घोड़े, तो जल्दी ही इनको पा लिया, और आगे समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर था। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए समंदर के अंदर रास्ता खोल दिया, इनको फरमाया कि अपना आसा समंदर पे मारे, और वहां से जब गुजर गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया छोड़ दें समुंदर को राहवन। ये उस वक्त की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम क्या चाहते थे कि मैं आसा दोबारा मारूं ताकि वापस समुंदर हो जाए और ये हम तक ना पहुंच सके। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ताला की प्लानिंग डिफरेंट थी ना। अल्लाह ताला को पता है, हालांकि छोड़ने में क्या है, वो जी आ जाएंगे अभी, हमारे कोई पीछा कर रहा है तो उसके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, वो पीछे आ जाएगा, यहां तक पहुंच जाएंगे। फरमाया नहीं, इन्नहुम जुंदु मुग्रकून, ये तो गर्क होने वाले। फिर उसके बाद वो वाकई गर्क हो गए। राहवन क्या है, सुकून के साथ मौजें ठहर जाए, इसको ठहरा रहने दो ऐसे ही। अल्लाह हु अकबर, वो सब गर्क हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कम तरकू मिन जन्नातिम वअयून वज़ुरूइन वमकामिन करीम वनअमतिन कानू फीहा फाकिहीन। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह ताला ने कम पूछ के कितने कितने, ये नहीं कि सवाल किया जा रहा है हमसे कि गिन के बताओ कितने उन्होंने छोड़े हैं बागात या चश्मे, बल्कि ये कम जो होता है ना बाज दफा कसरत के लिए भी आता है, कितने यानी बेशुमार, और हौलनाकी की खबर के लिए भी आता है। कैसी हौलनाक खबर है ये सवाल नहीं है, कैसी बात है कि उन्होंने कितने छोड़ दिए, जन्नात मायून, कितने बागात, कितने चश्मे। अब देखे ना आन की आन में ये हुआ, अब उन्होंने थोड़ी सोचा था कि हमने तो वापस ही नहीं आना, वो तो अपने घरों से इतने पैनिक में निकले, उन्होंने कहा बस इनको हम अब खात्मा ही करेंगे, चलो निकलो, ने तो सोचा था इनको लेकर आते हैं हम पकड़ के, तो ये किधर हमारी पकड़ से बच सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, उल्टा गर्क हो गए, किसी को वापस आने, अपने जो भी जो अपने बागात, अपने तायुशात, अपनी खेतियां, मकामे करीम से मुराद है कहा जाता है कि जो इनके जो स्टेज टाइप नहीं बनाए होते चीजें, एक मतलब ऊंची जगह जहां पे ये बड़ी शानो शौकत के साथ बैठा करते थे, या फिर दूसरा इसका माना उलमा ने ये किया कि जो बड़े इनके सजे सजाए घर थे वो भी मकामे करीम है, या फिर जो बादशाहों की मजलिसें थी, मसनदें थी, ऊंचे ऊंचे तख्त उनके बिछे होते थे वो मकामे करीम है, या जो इनके रिजॉर्ट्स थे वो मकामे करीम, यानी बड़ी मतलब मकाम करीम एक बड़ी इज्जत की जगह, इज्जत वाले मकामात जो इन्होंने अपने बनाए हुए थे, कौन चाहता है उसको छोड़ के जाना, लेकिन देखो कितने ही इन्होंने छोड़ दिए वहां पे, उसके बाद कौन आने वाला, कोई भी नहीं, ये ऐसे ही उनको छोड़ के चले गए। हालांकि इंसान का बस हो तो कभी भी ना छोड़ के जाए, और देखें वैसे भी जब इंसान की मौत आती है वो घर बार, अपने कपड़े, अपनी गाड़ियां, अपनी जॉबें, अपने बड़े बड़े बिजनेसेस, अपनी औलादें, अपने जो उन्होंने बड़े बड़े मकानात मोहल्लात बनाए होते हैं, या जो ऐश की चीजें होती हैं उनकी, वो सब छोड़ के चले जाते हैं। बैंक बैलेंसेस इतने इतने, लॉकर्स में क्या क्या रखा होता है, बाद में जाके लोग निकालते हैं कहते हैं अल्लाह क्या क्या इस बंदे ने जमा किया हुआ था, वो शानदार अपना सब कुछ, जो सब चीजें वैसी की वैसी रह जाती हैं, कितने ही छोड़ दिए कि किस लिए हमें बताया जा रहा है। वो नेमते, वो आराम की चीजें जिनमें वो खुश रहते थे, ऐश करते थे, अचानक जब मौत ने दबोच लिया, देख लो क्या इससे तुम इबरत नहीं सीखते कि ये देखो क्या अंजाम होता है इंसान का। ये तो जालिम थे तो इनका अंजाम ऐसे, अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह छोड़ जाते हैं लोग, इसी तरह उनका अंजाम होता है। और उस नाहा कौमन आखरीन, और एक और कौम ने उनकी जगह ले ली, उनके वारिस बन गए। बाज कहते हैं कि बनी इसराइली जब उसके बाद यानी शाम की सरजमीन पे उनका कब्जा हो गया था, हुकूमत हो गई थी सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तो उनकी हुकूमतें यहाँ मिस्र तक पहुंच गई थी। बाद ने कहा कि कुछ बनी इसराइल रह गए थे, उनकी हुकूमत थी, बाहर क्या जो भी थे, लेकिन एक दूसरी कौम ने इनकी जगह ले ली। लेकिन इबरत का मकाम इसमें ये है कि देखें इंसान अपनी सारी जिंदगी इन्हीं चीजों के पीछे गुजारता है ना, कि मैं बस अपने लिए बड़े घर बना लूं, आलीशान घर हो मेरा, उसमें इतनी नेमतें हों, उसमें ऐशो आराम के सारे सामान मैं जमा कर लूं, और फिर मेरा एक बड़ा अच्छा गार्डन भी होना चाहिए जिसमें ऐसे पानी भी जा रहा हो और ऐसी भी चीजें हो, और इसी के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगी गुजार देता है। इतना भागता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि कब मौत आ गई, और फिर जू ही मौत अचानक से आती है और उसको दबोचती है ना, सब पड़ा रह जाता है। आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब, एक बंदा दुनिया की हर चीज उसने कमा ली है, हर चीज, हर जैसे यानी बादशाहत उसके पास है, उसके पास ऐशो आराम है, उसके पास माल इतना है, जो चीज उसने ख्वाहिश की उसको मिल गई, आज के दिन उसको मिल गई और इधर मौत आ गई, तो कौन सी चीज है जो उसके लिए फायदेमंद रह गई? वो हारा या जीता? आप तो कहते हैं जीत गया, आप तो समझते हैं ना उसको जीता हुआ के, देखो जी कितना खुशकिस्मत है, जब मौत आ गई तो सब कुछ जीरो नहीं हो गया, फकीर हो गया वो, अब तो जो अमल है बस वही है, ये शानो शौकतें, बादशाहतें, ओहदे, पैसा, जायदादें, ये क्या रह गई, क्या वर्थ इनकी रह गई, ये जीरो नहीं हो गई। इसीलिए याद रखें, मौत ना इन सारी चीजों को क्या करती है, मल्टीप्लाई विद जीरो। जो मैथ समझते हैं उनको पता है जिस चीज को मल्टीप्लाई करें जीरो के साथ, वो चाहे बिलियन भी हो ना, बिलियन ट्रिलियन को भी मल्टीप्लाई बाय जीरो करें ना, तो उसका आंसर क्या होता है? जीरो। ये है मौत, मल्टीप्लाई विद जीरो कर देती है हर चीज को। इंसान के कुछ भी ये साथ नहीं जाता, कितनी शॉपिंग पे देर लगाते हैं, कितनी देर बैठे रहते हैं, एक एक चीज को पसंद करते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये ऐसे नहीं वैसे, और उसके बाद वो चीजें पा भी लें और मौत भी आ गई तो क्या पाया? कारोबारों के लिए कितने हलकान हैं, जॉबों के पीछे कितने हलकान हैं, और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए, फिर क्या करोगे? फिर और बड़ा घर लूंगी, फिर और क्या करोगे? फिर एक समर होम भी लूंगी, फिर और क्या करोगे? फिर वहां सैर के लिए भी जाऊंगी, फिर और क्या करोगे? फिर और जेवर कपड़ा और लूंगी, और ब्रांड नेम लूंगी, और ज्यादा मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, और ज्यादा मेरे पास ऐशो आराम की चीजें होंगी, फिर क्या करोगे अगर मौत आ गई तो? और वो तो आनी है, सारी खुशहालियां खत्म हो गई उनकी, लेकिन इन्हीं चीजों के पीछे वो भागे फिर रहे थे ना, इन्हीं चीजों के पीछे वो जुल्म करते थे। फिर उनको ये था मेरी बादशाहत चली जाएगी, हाय मूसा का पर ईमान ले आया तो ये तो बादशाह, ये खुद बन जाएगा, मेरा क्या रह जाएगा। मुशरिकी ने मक्का को भी ये था, हमारी सरदारियों का क्या फिर बनेगा अगर हम इन पे ईमान ले आए, हमारी सरदारियों का क्या बनेगा, वो किधर जाएंगी, हम तो फिर किसी के अंडर हो जाएंगे। और ये देखें फिरौन की क्या, हर जमाने के लोगों की ये हालत देख लें, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़ी बड़ी शहजादियां मलकाएं गुजरी हैं, फिर उसके बाद आज कौन जानता है उनको, उनके पास कितना कुछ होगा सोच सकते हैं आप? हम तो आम से लोग हैं ना, हम में से कोई भी बादशाह मलका है ही नहीं, लेकिन सोचे ना आप, नूरजहां को देखें, मोतियों पे चलती थी, शीशों के महल में रहती थी, और उसकी कब्र को देख के शायर कहता है, एक बाल ने कहा, रावी के किनारे एक टूटा सा मकान है, दिन को भी जहां शब की सयाही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहां है, दिन में भी अंधेरा, कोई जाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जहांगीर जिस पे फिदा होता था, सदियां गुजर गई, शायर उस पे रो रहा है, कह रहा है क्या है ये अंजाम। ये वो लोग थे जिनके आगे हटो बच्चों के शोर थे, जिनके आगे नौकर खादिम हाथ बांधे खड़े रहते थे दिन रात, जिनके एक ख्वाहिश जाहिर करने पे इनके सामने चीजें पेश कर दी जाती थी, जिनको उठ के एक भी तिनका भी दौरा नहीं करना पड़ता था, जिनकी हर बात इनके बोलने से पहले ही पूरी हो जाती थी, देख लो आज किधर पड़े हैं, वीराने हैं, वीराने ऐसे मकबरे बने हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, लोग वहां पे बैठ के ताश खेल रहे होते हैं। देखो जरा ये बताती नहीं दुनिया की, दुनिया कितनी भी तुम्हारे पास आ जाए, जितनी फिरौन के पास थी उतनी भी आ जाए, तो उसके बाद भी अगर अंजाम इसका मौत है ना, तो सब खत्म हो जाएगा। एक ही जमीन के नीचे बादशाह भी जा रहा है और फकीर भी जा रहा है।